الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے معاشرتی برائیاں. معاشرے میں ایسی بہت ساری برائیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، خصوصاً مستقبل میں. جو بچے ہمارا مستقبل کہلاتے ہیں اور جن کی وجہ سے آگے چل کے ہماری شناخت ہوگی، ان کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ، دیگر حضرات کے ساتھ اتنا غیر ذمہ دارانہ اور ناشائستہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اور وہ ایسی برائیاں ہیں کہ اگر ان پر غور نہیں کیا گیا اور ان کا سد باب نہ کیا گیا تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. سب سے پہلے یہ کہ والدین کا ادب احترام، یہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بتایا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور دیگر آیات بھی اس پر شاہد ہیں. حدیث شریف میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اور والدہ کے لیے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں. اور وہ ساری حدیث سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. غور کرنے کا مقام ہے کہ والدین بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، باپ خون پسینے کی کمائی سے ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرتا ہے. لیکن یہی بچے جب جوان ہوتے ہیں اور والدین بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ پھر ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ ایک باپ جو ہے وہ 10 بچوں کو پال سکتا ہے، لیکن 10 بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے. معاذ اللہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. اور آج آپ معاشرے میں نگاہ ڈالیں تو اگر باپ کا انتقال ہو گیا، ماں موجود ہے، 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. یا ماں کا انتقال ہو گیا، باپ موجود ہے تو ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. یا اگر دونوں موجود ہیں اور دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکے تو ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنے افسوس کی بات. سوچنا یہ چاہیے کہ آج جو وقت ان پر پڑا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے. اس لیے کہ بڑھاپا تو آنا ہے. بچپن، لڑکپن، جوانی یہ ایک طرح نہیں ہوتے. انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، پھر اس کا لڑکپن ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی ہوتی ہے. وہ پوری پور شباب جوانی، یعنی بالکل وہ اعضا اس کے درست ہوتے ہیں، طاقت کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے وہ بالکل فٹ. لیکن پھر ہر کمال راز والے جب وہ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے اور جب عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ زوال کی طرف آ جاتا. اور بڑھاپے میں اور بچپن میں انسان کی عادات ایک ہی طرح ہو جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ضد کرتا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، بچہ چیزوں کو توڑ بھی دیتا ہے، بچے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. یہی چیز بڑھاپے میں ہوتی ہے. اور اس بڑھاپے کی ضد کو، بڑھاپے کے جو ایٹیٹیوڈ کو انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا. جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے اندر ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے تو بچے اپنے باپ کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جواب دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ان کو اُف تک نہ کہو، اور جب بھی بات کرو بہتر طریقے سے کرو، حسن سلوک کے ساتھ کرو. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ برائیاں عام ہو چکی ہیں. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں پہلے ہالینڈ، انگلینڈ جاتا تھا اور اب بھی جاتا ہوں، تو وہاں میں نے اولڈ ہاؤس دیکھے تھے. تو ہم نے کہا کہ شکر ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، کہ وہاں جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ تو ڈال ہی دیتے ہیں، اپنے مسلمان جو ہیں وہ بھی اولڈ ہاؤس میں والدین کو ڈال دیتے ہیں، کوئی خدمت نہیں کرتا. یہ بات الگ ہے کہ وہاں کیئر بہت کی جاتی ہے، क्योंकि वो पहले से तनख्वाहों में से वो पैसा कटता है, तो जो उधर जमा होता रहता है। बहरहाल कराची में एक मकाम पर जब मेरा जाना हुआ और वहाँ देखा तो निहायत अफसोस हुआ कि वहाँ पर भी ओल्ड हाउस था, बल्कि अब भी है, और ऐसे लोग जिनके बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, किसी के बच्चे गैर मुल्कों में यानी अमेरिका या यूरोप वगैरह में अच्छे ओहदों पर हैं, उन्होंने अपने वालदैन को ओल्ड हाउस में दाखिल करा दिया। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत, वो बाप जिसकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा, उन दोनों को बोझ समझकर माज़ अल्लाह के ये बोझ है दाखिल करा। ये नहीं सोचा कि आज हम कर रहे हैं कल हमारे साथ भी यही होगा, ये सोचने का मकाम है। इसी तरह अगर बाप बीमार हो जाए और वॉशरूम वगैरह का मसला उसके साथ हो, तो अपनी जान बचाने के लिए कोई मेड नर्स, मेल नर्स जिसे कहते हैं, वो रख दिया, पैसा मौजूद है, पैसा दे दिया, भई ये कर लेगा। आप खुद अगर खिदमत करते तो कल आपकी औलाद भी खिदमत करती, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने कामों में, अपने कारोबार में, अपनी खुशियों में मगन हैं, वालदैन पड़े हुए हैं, बीमार हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ इतना सोच लें कि आज जो आप अपने वालदैन के साथ कर रहे हैं, कल आपकी औलाद भी आपके साथ करेगी। अगर आज आप खिदमत करते हैं और उनके जो भी मामलात हैं आप खुद अपने हाथ से करते हैं, कल आपकी औलाद भी आपके साथ करेगी। तो ये काफ़ी माशरती बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई, जिसको कहना चाहिए कि हम वालदैन को घरों में रखने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी डांट सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, उनका मिजाज बुढ़ापे की वजह से चिड़चिड़ा हो जाए, वो डांटें, वो कुछ कहें, और हम सोचते हैं कि इनको जाकर दाखिल करा दो ताकि हमारी दर्द सरी ख़त्म हो जाए। अफसोस का मकाम है। हमें चाहिए कि हम गौर करें, ये दुनिया मकाफात अमल है। आज जो आप करेंगे कल आपके साथ इसी तरह होगा। ये भी तो मैंने सिर्फ चंद मिसालें पेश की। और जिस ओल्ड हाउस में मैं गया और वहाँ जाकर देखा, तो एक साहब थे जो पायलट रिटायर हुए, एक साहब थे जो इंग्लिश के प्रोफेसर, वो रिटायर हुए, इसी तरह एक साहब थे जो किसी बड़े ओहदे पर थे। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई और जिन साहब ने वो ओल्ड हाउस बनाया था उन्होंने तारुफ कराया बाद में, उन लोगों के सामने नहीं, बाद में तारुफ कराया कि ये फला साहब जो थे ये पायलट थे और इनके दो बच्चे अमरीका में हैं, ये साहब जो हैं ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और रिटायर हो चुके हैं, इनके बच्चे इनको यहाँ दाखिल करा के चले गए, वो कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं। इसी तरह फला साहब जो हैं उनके बच्चे बहुत बड़े बिजनेसमैन। अफसोस का मकाम ये है कि जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से आपकी परवरिश की, आपको तालीम दी, तहजीब तमद्दुन सब सिखाया, माशरे में बैठने के काबिल बनाया, उसी को आपने घर से निकाल दिया, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। वो तन तनहा अपने बच्चों को याद करता होगा, कभी अपनी बीवी को याद करता होगा, कभी अपने पोता पोतियों को देखने की ख्वाहिश करता हो, लेकिन वो सब उससे दूर हैं, वो बिल्कुल, यानी तन्हाई जो है वही इंसान को मार देती। तो जो लोग इस अमल के मुर्तकिब हैं उनको चाहिए कि अपने वालदैन को फौरन अपने घर लेकर आएं और जितनी भी हो सके जब तक भी उनकी ज़िंदगी है उनकी खिदमत करें और अपनी आक़िबत को संवार लें, वरना आक़िबत जो ख़राब होगी होगी, दुनिया ही ख़राब हो जाएगी। और आज जो अपने वालदैन के साथ कर रहे हैं कल इंशाअल्लाह उनके साथ भी यही होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए जो अपने वालदैन के साथ गलत अमल, गलत सलूक वो कर रहे। दूसरी चीज, यानी हम ये माशरती बुराइयां तो काफ़ी हम इख्तसार के साथ बयान कर रहे हैं। जॉब के सिलसिले में बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और उनको कोई तावीज़ दिया जाता है, कोई वजीफा पढ़ने के लिए बताते हैं। अक्सर जगह ये देखा गया कि लोग एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार हैं। अगर ये आगे बढ़ रहा है मैं इसकी टांग खींच लूँ, इसके हटा के मैं चला जाऊँ, इसकी तरक्की में रुकावट डाल दूँ, इसकी तरक्की ना हो मेरी तरक्की हो जाए, और इसके लिए क्या है अपने सेठ अपने बॉस के कान भरने पड़े, झूठ बोलना पड़े, रिश्वत देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, इंसान सोचता है किसी तरह इसको रोकना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। गौर करने का मकाम है। आप सिर्फ इतना सोचें, खालिक़े कायनात सब कुछ देख रहा है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, और इसी दुनिया में उसका सिला उसका नतीजा आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे आपके साथ भी अच्छा होगा, और किसी के साथ बुराई करेंगे तो आपके साथ भी बुरा हो। आज आपने उसकी जॉब ख़त्म करा दी, कल आपकी जॉब भी ख़त्म हो जाएगी। आज आपने उसकी टांग खींच ली, उसकी तरक्की होने वाली थी आपने नहीं होने दी, कल आपके साथ भी यही हो। इंसान गाफिल है, वो नहीं समझता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब वही काम उसके साथ होता है तो फिर वावेला करता है, फिर चीखता है, फिर चिल्लाता है, फिर कहता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ जुल्म हो गया। ये नहीं सोचता कि तुमने भी तो किसी के साथ जुल्म किया था, अब जब तुम्हारे साथ हुआ तो फिर तुमने चीखना शुरू कर दिया कि मेरे साथ जुल्म हो गया। तो इसलिए कभी भी किसी की तरक्की के राह में रुकावट ना बने, खुसूसन नौकरी के जॉब के सिलसिले में। अगर कोई कहीं जॉब कर रहा है, उसकी तरक्की हो रही है, आप अपना अमन, अपना किरदार दुरुस्त रखें और किसी से हसद ना करें कि ये क्यों आगे बढ़ रहा। हाँ, दुआ करें, मौला जैसे इसकी तरक्की हुई है, मेरी भी तरक्की हो जाए। अगर आप उसकी काट में रहेंगे, आज आप करेंगे, कल आपके साथ भी वही होगा। और ये हमने इस चीज़ का मुशाहिदा भी किया है, इसी दुनिया में पता चल जाता है। वो अलग बात है कि वक्फा कुछ अलग होता है, आज आपने किया तो एक साल के बाद आपके साथ होगा, या 5 साल के बाद, या 10 साल के बाद। किसी को आपने खड़े खड़े निकलवा दिया और खुश हो गए कि मैंने अपने दुश्मन को साफ कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, बॉस मेरे हक में है, फला मेरे हक में है। पता चला 5 साल के बाद बॉस का इंतकाल हो गया, उसके जब लड़के आए उन्हें सबसे पहले पुराने लोगों को किक आउट कर दिया, निकल गए। क्या हुआ? इस तरह आपने निकलवाया था, आपके साथ भी होगा। इस तरह हजारों मिसालें आपके सामने पेश की जा सकती हैं, बल्कि आप सब खुद माशरे में रहते हैं, आप खुद देखते हैं। इसलिए मैं अपने नाज़रीन और सामईन से ये गुजारिश करता हूँ कि कभी भी किसी की तरक्की के राह में रुकावट ना बने, ख्वाह वो जॉब हो, ख्वाह वो कारोबार हो। अगर देख रहे हैं कि उसका कारोबार तरक्की कर रहा है तो कोई ऐसा अमल ना करें कि उसकी तरक्की रुक जाए। अगर कोई जॉब में, नौकरी में तरक्की कर रहा है तो कोई ऐसा काम ना करें कि उसकी तरक्की रुक जाए। अपनी तरफ से किसी के लिए गलत ना चाहें, बुरा ना चाहें, बल्कि भलाई चाहें। आप भला करेंगे, आपके साथ भी भलाई होगी। आप बुरा करेंगे, आपके साथ भी बुराई होगी। खालिक कायनात सब कुछ देख रहा। अब इसके बाद है अज़्वाजी जिंदगी। मियां बीवी का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रखा है, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। जिस तरह लिबास जिस्म के उयूब को ढांप लेता है, इसी तरह मियां बीवी एक दूसरे के उयूब को ढांप लेते। आजकल तो अजीब मसला है, शौहर माशरे में बैठकर, दोस्तों में बैठकर, रिश्तेदारों में बीवी की बुराइयां कर रहा है, बीवी अपनी सहेलियों में, अपने रिश्तेदारों में बैठकर शौहर की बुराई कर रही है, उसके उयूब व नकाइश को, ये उनके उयूब नकाइश को बयान कर रहे हैं, वो इनके उयूब व नकाइश को बयान कर रहे हैं। पता चला दोनों माशरे में बिल्कुल पता चल गया लोगों के कि इनकी क्या हरकतें हैं और क्या चीज़ें। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के वालदैन को बुरा भला कहना, ये तमाम चीज़ें माशरती बुराइयाँ हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद होने। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की सही अज़्दवाजी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। देखा कि ये सुकून के साथ मियाँ बीवी रह रहे हैं, बीच में कोई शोशा छोड़ दिया, कोई गलत बात कह दी, किसी तरह शौहर को गुस्सा आए तो बीवी को घर से निकाल दे, या बीवी को गुस्सा आए तो शौहर को बुरा भला कहें। कभी ये काम सास करती है, कभी ये काम नंदे करती हैं, कभी ये काम भावजे करती हैं, कभी ये काम देवरानियाँ जिठानियाँ करती हैं। घर को बर्बाद कर देना ये एक बहुत बड़ी गलती है, बल्कि मैं कहूँ तो बहुत बड़ा गुनाह है। तलाक अल्लाह के नज़दीक जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम। ऐसे भी केस हमारे पास आए कि नंद ने यह कहा कि मेरी अना का मसला है बस, लिहाजा मुझे तलाक दिलवानी है, और भाई जो है वो उसके ग़ुलाम है कि बस आपा ने कह दिया, बाजी ने कह दिया, तो मुझे तो ये करना है। अब गौर करें, एक मासूम बच्ची, उसकी शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए या 1 साल भी नहीं हुआ, और वो नंद जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाई अगर मियाँ बीवी राज़ी हैं, सुकून से रह रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? कहीं सास ये काम करती है, कहीं नंदे ये काम करते हैं। और उसने बबांगे दोहल कहा कि मेरी अना का मसला है, मैं जब तक इसको तलाक नहीं दिलवा दूंगी चैन से नहीं बैठूँ। ये नहीं सोचा कि अपने आगे भी बेटियां हैं, उनके साथ भी यही मामला होगा और दीगर मामलात भी हो सकते हैं। गाफिल हो जाते हैं रब से और फिरौन बन जाते हैं। गुरूर तकब्बुर का पुतला, ईगो हमारी अना ना खत्म हो जाए, हमें झुकना ना पड़े, इसने क्यों कहा, लिहाजा इसको घर बर्बाद कर दो और ऐसा बर्बाद करो कि इसको बिठा दो। और अगर तलाक हो जाए तो उस पर एक तलाक का दाग लग गया, धब्बा लग गया और खुश हो रहे कि हमने ऐसा कर दिया। ये नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी भी इसी तरह गुजरेगी, इसी तरह और इसी तरह क्या मरते दम जब सांस निकलता है तो अक्सर केस ऐसे आए कि सांस अटक गया, सांस निकला ही। ये तो जाकने का वक्त होता है नजा का आलम, ये इतना खतरनाक होता है कि ना जान निकलती है और ना रहती है, यानी बीच में इंसान अटका हुआ है, तड़प रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह का मामला है, अल्लाह से दुआ करो, किसी बुजुर्ग के पास जाके दुआ कर दो, या अगर इसने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मंगवा दो। और ऐसे भी केस आए कि जब जान अटक गई, लोगों ने कहा कि भाई अब उस शख्स को तलाश करो जिसका इसने दिल दुखाया। लोगों ने कहा वो तो घर में मौजूद है, इसकी बहू थी जिसने सारे जुल्म सहे और इसने उसको हर तरीके से तंग किया, अपने बेटे से पिटवाया, जुल्म कराया, खुद मारा, अपनी बेटियों से पिटवाया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। तो वो अगर माफ़ कर दे तो रब माफ़ कर देगा। और देखने वालों ने देखा कि जब उसको कहा, वो रोती हुई आई, उसने कहा मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने माफ़ किया, उधर दम निकल गया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है, चंद रोज़ा जिंदगी है। इंसान किसी पे जुल्म करता है, ज्यादती करता है, हुकूक को गसब करता है, बड़े बड़े बोल बोलता है, लेकिन उसको नहीं पता कुरान ने कहा इन बदश रबी का लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, और ढील दे रहा है, लेकिन जब वो पकड़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छुड़ा नहीं सकती। तो इसलिए उन औरतों को और उन मर्दों को हम ये कहते हैं कि कभी भी किसी की पुरसकून अज़दवाजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें, ना सास करें, ना भाभियाँ करें, ना देवरानियाँ जिठानियाँ करें, ना और कोई करे, मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। कहीं मर्द किसी का घर बर्बाद करवा रहा है, कहीं औरत किसी का घर बर्बाद करवा रही है, और फिर खुश है बाद में कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया, हमने बदला ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन ये सोचो कि जब वो खालिक कायनात जब उसकी पकड़ आएगी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि घर बन जाएं, कोशिश करें कि बिगड़ने के बजाय बन जाएं, बनाने में कोशिश करें, बिगाड़ने में कोशिश ना करें। अल्लाह के गज़ब से डरें, उसकी लाठी बेआवाज़ है, जब उसकी पकड़ आती है या तो बीमारी की सूरत में, या परेशानी की सूरत में, या हादसात की सूरत में, या फालिज की सूरत में, किसी भी सूरत में, कि फिर इंसान मजबूर होता है, मरना चाहता है तो मर भी नहीं सकता, पड़ा होता है, किसी ने खाना दे दिया तो ले लिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर उसकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, माओ, गौर करें, सोचें, कभी भी किसी की पुरसकून अज़दवाजी ज़िंदगी को बर्बाद न करें। तलाक तो बहुत दूर की बात है, मियाँ बीवी में आपस में नफ़रत पैदा न करें। आपस में नफ़रत पैदा कराते हैं और लड़ाइयाँ कराते हैं, शौहर से पिटवाते हैं और खुश होते हैं कि हमने बदला ले लिया। तो ये चीज़ बहुत माशरे में फैल रही है, इसलिए हमने उसका जिक्र किया है। इस पर ख़ास तौर पर गौर करें और कोशिश करें कि कहीं अगर ऐसा है तो उन दोनों को मिला दें, घर बर्बाद होने से बच जाए। एक चीज़ है शर्म हया का लिहाज ना रखना, ये भी हमारे माशरे में बहुत फैल रही, खुसूसन लड़कियां। देखिए लड़का हो या लड़की, बचपन से उसकी तरबियत अगर इस्लामी खतूत पर की जाएगी, इस्लामी लिहाज से, तो वो माशरे में बेहतरीन किरदार अदा करेगा और करेगी। अगर लड़की है तो बेहतरीन माँ बनेगी, लड़का है तो बेहतरीन बाप बनेगा। यहाँ पर क्या गफलत है? गफलत ये है कि छोटी छोटी बच्चियाँ 5 साल, 6 साल या 10 साल, आप देखें कि उनको हाफ स्लीव्स पहनाई जाती हैं, या कभी कभी तो आस्तीनें होती नहीं, जीन्स की पैंट पहनी हुई हैं, ऐसे अजीब किस्म के कपड़े जो लड़के पहनते हैं वो लड़कियों को पहनाती, दुपट्टे का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, बाल खुले हैं, और जब कहो तो कहनी बच्चियाँ हैं, ये तो बच्ची है, अगर इसने पहन लिया तो क्या हुआ, ये तो छोटी बच्ची है, ये तो 2 साल की, ये तो 2.5 साल की, ये तो 5 साल की है, 10 साल की बच्ची जब भी कहते बच्ची है, अगर बचपन से उसको ये आदत पड़ जाएगी तो जब वो 18 साल की जवान होगी तब भी वो इसी तरह होगी। बचपन से आप उसको बताएंगे कि इसका पहनना है, उसको बताएंगे दुपट्टा पहनना है, उसको बताएंगे कि वालदैन के सामने, दादा दादी के सामने, नाना नानी के सामने किस तरह आना है, सर ढाप कर आना है, अदब से आना है, एहतराम के साथ आना है, यही चीज़ उसकी घुट्टी में पड़ जाएगी, फिर वो मरते दम तक कभी भी उसके सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा। लेकिन आज माशरे में आप देखें, और खुसूसन शादी के मौके पर ये देखा जाता है कि औरतें बाल खोल कर और दुपट्टा गले में डाल के, या बल्कि गले में भी नहीं होता, और ओपन एयर में जैसे जो शादियां होती हैं, जो ऐसे हाल होते हैं खुले बिल्कुल, वहां जाती हैं, नतीजा क्या होता है, दरख्त होते हैं, दरख्तों पर असरात होते हैं, और वही असरात फिर वहीं से सीधे उनके ऊपर आ जाते हैं। और ऐसे केस मेरे सामने 7-8 मौजूद हैं कि जिन लड़कियों के बाल बिल्कुल जाम हो चुके हैं, यानी ऐसे जाम हो चुके हैं कि आप उसमें कंघी भी नहीं कर सकते जैसे पत्थर, और उसको लगता है कि मेरे सर पे कोई बहुत बोझ है, अब क्या करें, डॉक्टर तो कुछ कर नहीं सकते, हकीम कुछ कर नहीं सकते सिवाय रूहानी इलाज, और रूहानी इलाज भी तावीजात मल के जलाएं तो थोड़े से खुल जाएं, किसी चीज़ की धुनी दी तो थोड़े से खुल गए, कुछ पढ़ के दम किया तो थोड़े से खुल गए, लेकिन उसके लिए भी एक लंबा इलाज होता है तब जाके वो खुलते हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं कि पहले ही हम अपने सरों को ढाँप लें, जो इस्लाम का तरीक़ा है, बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, इस्लाम की तालीमात हैं। हमारे बुज़ुर्ग ये फरमाते थे कि कभी भी असर मगरिब के दरमियान, और खुसूसन जब मगरिब का वक्त हो, दोनों वक्त मिल रहे हों, दिन के जाने का वक्त, रात के आने का वक्त, उस वक्त औरतों को बाजारों में घूमना, पार्कों में घूमना, बगैर दुपट्टे के घूमना सख्त इससे मना करते। क्यों, वजह यही थी, इस्लाम की तालीमात तो यही कि हमें वक्त ही दुपट्टा ओढ़ जाए, जरूरी नहीं कि आप दोपहर हो तो आप उतार के फेंक दें, सुबह उतार के फेंक देनी, शाम को कहा गया नहीं। शर्म और हया जो है ये औरत का जेवर है। सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी मिसाल आज हमारी औरतों के लिए एक बेहतरीन नमूना है, उस पर अमल कर लें सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ना महरम के सामने नहीं आना है, उससे हंस के बात नहीं करनी है, उसके सामने बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, बेपर्दा नहीं आना है, हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन आज इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, खुसूसन लड़कियों को ये तरबियत दें, बचपन ही से उनको उन्हीं का लिबास पहनाएं, लड़कों का लिबास ना पहनाएं। बहुत से लोग ऐसे लड़कियों को लाते हैं जीन्स की पैंट पहनी हुई है, शर्ट पहनी है, और जब उनसे कहा नहीं ये तो बच्ची है, अभी क्या है, अभी तो बच्ची है पहन सकती, तो बच्ची है, जब बच्ची बड़ी होती है तो फिर भी उसको यही आदत हो जाती है। बचपन से ही उसको वही लिबास पहनाया जाए, उसके स्कार्फ बांधे जाए, उसको बताया जाए, शर्म हया का लिहाज रखा जाए, तो फिर वो माशरे में एक बेहतरीन माँ बनकर उभरेगी। और जब ये कैफियत होगी तो आप देखेंगे फिर आगे जो बच्चे होंगे उनकी क्या कैफियत होगी, वो तो फिर बिल्कुल ही आउट होगी। तो इसलिए अगर हमें अपनी नस्ल को बचाना है तो इस्लाम की तालीमात पर अमल करना है, इस्लामी खतूत पर उनकी तरबियत करनी, बड़ों के सामने नंगे सर नहीं जाना। मेरे वालिद गिरामी अशरफ़ुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफ़ी जीलानी नब्बर अल्लाह मरकदो, उन्होंने घर का माहौल ऐसा रखा कि हम बहनों और भाइयों, यानी दोनों में, लड़के लड़कियों की कोई तख़सीस नहीं, दोनों में किसी ने भी कभी भी उनके सामने नंगे सर जाने की जरूरत नहीं। बहनें जाती दुपट्टा ओढ़कर, भाई जाते टोपी ओढ़कर, कभी भी हमें याद नहीं कि हम नंगे सर उनके सामने गए। बचपन से वालदा की तरबियत यही थी, वालिद की तरबियत यही थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औलाद भी उसी पर कायम। आज आप अपनी औलाद को जो तरबियत देंगे कल उसी का नतीजा आपको मिलेगा। तो उन तमाम वालदैन से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरबियत पर ज़ोर दें, उनकी तालीम और तरबियत पर, खुसूसन इस्लामी तालीमात पर, इस्लामी माहौल अपने घर का बनाएं, نماز، روزہ، ان تمام چیزوں کی پابندی خود بھی کریں اور اپنی اولاد سے بھی کرائیں. جن گھروں میں رمضان المبارک میں کھانے پک رہے ہوں اور روزے کا کوئی تصور بھی نہ ہو تو اولاد کیا خاک روزہ رکھیں؟ روزے کی اہمیت ان کو بتائیں، رمضان کی فضیلت ان کو بتائیں، تراویح میں بچوں کو لے جائیں، جمعے کی نماز میں بچوں کو لے جائیں، مسجد کا ادب اور احترام ان کو سکھائیں. اسی طرح گھروں میں مائیں اپنی بچیوں کو بتائیں کہ کسی کے سامنے ننگے سر نہیں جانا ہے، شادیوں میں بال کھول کر نہیں جانا ہے، یہ سب اسلام کے خلاف ہے. آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ناخن بڑے ہوئے، اب آپ خود سوچیں کہ ناخن جب بڑھیں گے اور اس سے کھایا جائے گا تو جراثیم منہ میں جائیں گے. آپ کہتے ہیں ہم تو چمچے سے کھا رہے ہیں. اچھا، اگر چمچے سے کھا رہے ہیں تو جب واش روم جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر طہارت اور پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. صرف اتنا سوچ لیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. جب منع فرمایا ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جو سرکار کا ارشاد ہے وہ اپنی جگہ مسلم. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم فیشن میں آ کر لڑکیاں اپنے ناخن بنا رہی ہیں، فیشن میں آ کر بال بڑھا کر، بال کھلے چھوڑ کر، اور پھر شادیوں میں جا کر خوشبو لگا کر گھومنا پھرنا. نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر جب وہ اثرات ہوتے ہیں، پھر سر پہ ایک بوجھ سا ہوتا ہے، پھر بال جڑ جاتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، ہزار قسم کی چیزیں صرف ایک چیز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. لیکن وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو باپردہ خواتین ہیں، جو اپنے بالوں کو نہیں کھولتی، بالوں کے اوپر دوپٹہ یا اسکارف لیتی ہیں، وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو یہ وہ معاشرے کی برائیاں ہیں. برائیاں تو بہت ساری ہیں، چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اس کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اولاد کی صحیح تربیت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.